परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वक्वदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरो दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज श्री बलराम जयंती है। जैसा कि आप सब जानते हैं बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। वृंदावन में मथुरा में द्वारका में और अन्य स्थानों में भी बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बड़े भाई की भूमिका निभाई। जब हम भगवान की बात करते हैं और उनके बारे में कुछ समझना चाहते हैं और विशेष करके उनकी लीलाओं को समझना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम पहले ये जान लें कि भगवान हैं कौन। इसलिए भगवान को समझने के लिए दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है तत्व और दूसरा है रस। तो आप जब वापस जाएंगे घर में, बलराम जी का जन्मदिन है ये तो याद रखिए, बलराम जी कौन है अवश्य याद रखिए, ये भी याद रखिए, दो शब्द तत्व और रस। रस मतलब केवल अमरस नहीं, तत्व का मतलब है कि जो वास्तव में है वो, जो वास्तविक परिस्थिति है उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे सृष्टि तत्व, सृष्टि क्या चीज है, इसका तत्व हमें तात्विक रूप से हमें जानना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम, ये क्या चीज है, हरि नाम तत्व, तात्विक दृष्टि से हमें हरि नाम क्या है ये जान लेना चाहिए। धाम तत्व, जैसे वृंदावन धाम है, तो ये धाम वास्तव में है क्या, दिखने में तो एक साधारण स्थान जैसे लगता है, बाह्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखता, परंतु यदि हम तत्व जान लें वृंदावन धाम का, तो हम जान लेंगे कि वृंदावन धाम में और साधारण किसी स्थान में बहुत अंतर है। तो उसी प्रकार से हमें भगवत तत्व भी जान लेना चाहिए, भगवान कौन है वास्तव में। तो भगवान, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, श्रीमद् भागवत में भी करते हैं और अनेक शास्त्रों में जैसे वर्णन है, श्री कृष्ण भगवान है। वो अन्य प्रत्येक वस्तु के, व्यक्ति के, शक्ति के उद्गम हैं, उत्स हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विताः। वो कहते हैं कि मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, दोनों जगतों में जो भी कुछ है वो मुझसे स्वतंत्र नहीं है, मुझसे बाहर नहीं है, मुझसे ही उत्पन्न होता है हर एक वस्तु। ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो या इस भौतिक जगत में हो, जो कि भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न न हुआ हो। इसलिए भगवान या परम सत्य की परिभाषा क्या है कि भगवान वो सत्य हैं, वो व्यक्ति हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। तो भगवान के धाम में भी हम देखते हैं कितनी सारे विविधताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के उद्गम हैं, ये जानना तो इतना मुश्किल नहीं है। सृष्टि का सृजन भगवान करते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं, और ये बारंबार ऐसे चक्र चलता रहता है। परंतु आध्यात्मिक जगत की बात क्या है, क्या आध्यात्मिक जगत में भगवान के जितने सारे संबंध हैं वो क्या सत्य नहीं है, वो क्या तात्विक नहीं है। जैसे कि वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, श्री कृष्ण के पिता हैं नंद महाराज, उनकी माता है यशोदा देवी। जब भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत से यहां भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, तो वो अपने पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं। उनके माता पिता भाई उनके मित्र आदि सब गोलोक वृंदावन जो कि आध्यात्मिक जगत में स्थित है वहां से वो यहां धरातल पर आते हैं। बल्कि श्री कृष्ण अपने धाम को ही प्रकट कराते हैं इस पृथ्वी लोक पर, और वो धाम जो यहां प्रकट होता है वो उस धाम से अध्यात्म जगत के धाम से बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब श्री कृष्ण यहां आते हैं वही नंद महाराज वही यशोदा माता वही गोपियां वही गोपगण उनके साथ में प्रकट होते हैं, और जब यहां प्रकट होते हैं ऐसा नहीं है कि वहां सब खाली पड़ गया है, वहां भी भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। तो फिर ये कौन है सब? यदि भगवान ही हर व्यक्ति के हर वस्तु के उद्गम हैं तो उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? माता पिता कौन होते हैं जो हमारे उद्गम हैं? हमारा जन्म माता पिता से होता है, ऐसा नहीं कि माता पिता का जन्म हमसे होता है। तो यदि नंद महाराज और माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के माता और पिता हैं, तो फिर ये एक विरोधाभास लगता है। एक ओर हम तत्व के दृष्टि से कहते हैं कि श्री कृष्ण ही हर वस्तु के हर व्यक्ति के उद्गम है, और दूसरी ओर हम कहते हैं कि नंद महाराज उनके पिता हैं, माता यशोदा उनकी माता हैं, और उनके चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं, बहुत सारे संबंध हैं गोलोक वृंदावन में। तो ये कैसे हमें समझना चाहिए? इस विरोधाभास का समन्वय कैसे किया जाना चाहिए? इसलिए तत्व के अलावा एक दूसरे शब्द को जानने की आवश्यकता है, उसे कहते हैं रस। रस मतलब भगवान तात्विक रूप से परम सत्य हैं, हर व्यक्ति के हर वस्तु के उद्गम अवश्य हैं, फिर भी अपने दिव्य आनंद की वृद्धि के लिए, दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, तरह तरह के संबंधों में अपने भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ऐसे संबंध बना लेते हैं, और वो मान लेते हैं कि ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, ये मेरे दादा है, ऐसे वो मान लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उस प्रकार का रस उस संबंध से लेना चाहते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में भी तरह तरह के रस होते हैं, दो मित्रों के बीच में एक प्रकार का प्रेम होता है, और मित्र इस मैत्री के संबंध के रस का आस्वादन करना पसंद करते हैं। तो कभी माता पिता और बच्चों का संबंध है तो उस संबंध में भी थोड़ा एक रस होता है, एक आनंद होता है, जिस आनंद को चखना चाहते हैं माता पिता भी और बच्चे भी। उसी प्रकार से पत्नी और पति के बीच में भी एक संबंध होता है तो दोनों पति पत्नी इस संबंध का भी स्वाद लेना चाहते हैं। तो इन समस्त प्रकार के संबंधों में जो हमें सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो भावना का अनुभव हम करते हैं, उसे हम रस कहते हैं। जिस प्रकार से आम को खाते हैं तो आम में से क्या मिलता है? रस मिलता है। तो आम का निचोड़ जो है वो रस है। तो ठीक उसी प्रकार से संबंधों का निचोड़ क्या है? रस। यदि रस कड़वा हो जाता है तो हम आमरस नहीं पीना चाहते हैं, खट्टा हो जाता है कभी तो अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से दुनिया के संबंधों में ऐसे रस कभी कभी, कभी कभी नहीं, बहुत ज्यादा वो कड़वा हो जाता है। फिर मैत्री का संबंध बिगड़ जाता है, पति पत्नी के बीच में संबंध बिगड़ जाता है कभी कभी। तो ऐसे दुनिया के संबंध बिगड़ जाते हैं, रस कड़वा हो जाता है। इन संबंधों की स्थापना हमने की है मीठे रस का आस्वादन करने के लिए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, हुआ कि हमने कड़वा रस का पान कर लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो संबंध हैं जो कि वो बना लेते हैं गोलोक वृंदावन में, उन संबंधों में जो रस है वो सदैव मीठा होता है। और इतना ही नहीं, ये मीठा रस बढ़ते रहता है अनंत रूप से, कभी कड़वा नहीं होता। तो ये है ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनंत रूप से ये सुख बढ़ता है, क्योंकि ये दिव्य है, आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है। यहां जो संसार के संबंध होते हैं वो इस प्रकृति के स्तर पे स्थित होते हैं, इस जड़ जगत से संबंधित होते हैं, इस जड़ शरीर से संबंधित होते हैं। और ये जड़ शरीर तो सुख का कारण नहीं है, ये तो दुख का ही कारण है। तो जैसे हम लोग यहां संबंध बना लेते हैं रस की अपेक्षा करके, भगवान भी वैसे ही संबंध बनाते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में। बल्कि हम लोग ऐसे संबंध यहां इसलिए बनाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि भगवान के अंदर भी ऐसी इच्छा होती है। तो यहां इस भौतिक जगत में जो भी देखा जाता है वो प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। वहां जो भी हो रहा है उसका विकृत प्रतिबिंब हम यहां इस भौतिक जगत में देखते हैं। और क्योंकि ये विकृत है और प्रतिबिंब है, इसलिए यहां अक्सर ये संबंध कड़वे हो जाते हैं। परंतु भगवान के धाम में ऐसे संबंध कभी भी कड़वे नहीं होते हैं। तो हर एक व्यक्ति भगवान के धाम में भगवान का शुद्ध भक्त है, और ऐसे शुद्ध प्रेम का आस्वादन दोनों भगवान और उनके भक्त करते हैं। और तरह तरह के संबंधों के अनुसार तरह तरह के रस होते हैं। तो माता यशोदा नंद महाराज को अपने माता पिता मानकर वो वात्सल्य रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ क्रीड़ा करते करते वो सख्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। वो गोपियों के साथ में लीला करके माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। इस तरह से नाना प्रकार के संबंध उपलब्ध हैं भगवान श्री कृष्ण के धाम में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अखिल रसामृत मूर्ति। अखिल समस्त प्रकार के रसों के वो मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो तात्विक रूप से भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, उनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। परंतु अपने आप को वो विस्तार करते हैं असीमित रूप से, और अपने विस्तार किए हुए अंशों के साथ में वो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं अनेक प्रकार के संबंधों में। और इस प्रकार से रस का आस्वादन करते हैं, कभी माधुर्य रस का आस्वादन, तो कभी सख्य रस का, कभी वात्सल्य रस का इत्यादि। तो ये भगवान की लीला होती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सोचने लगते हैं कि ये मेरे पिता है नंद महाराज। और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है नंद महाराज, उनके योग माया शक्ति के कारण वो भी सोचने लगते हैं कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने माता के बारे में भी सोचते हैं कि ये मेरी माता है, और यशोदा माता भी सोचती हैं ये मेरा पुत्र है। वृंदावन में माता यशोदा और नंद महाराज ये नहीं सोचते हैं कि कृष्ण परम सत्य है, हम कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा नहीं सोचते। वो केवल कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, और ऐसा पुत्र का स्नेह या एक माता पिता का स्नेह बरसाते हैं कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं एक जगह कि जब श्री कृष्ण इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं एक ग्वाल बाल हूं, यद्यपि वो परम सत्य है, फिर भी वो सोचते हैं मैं एक ग्वाल बाल हूं, तो ये भगवान की लीला है। भगवान का इस तरह से सोचना और उस सोच के अनुसार कार्य करना, ये लीला है। उसी तरह से भगवान जब नंद महाराज और माता यशोदा को अपना पिता और माता मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसे सोचना ये लीला है। तो भगवान के धाम में ये दिव्य लीलाएं चल रही हैं, तत्व भी है और रस भी है। इसके लिए एक साधारण उदाहरण आपको दे दें। सोचिए कि एक व्यक्ति है या दो आदमी हैं जो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, और वो एक नाटक में भाग ले रहे हैं, और उनमें से दोनों की भूमिका है कि वो भाई बने हैं नाटक में, या तो फिर एक मित्र दूसरे मित्र का बेटा बना है, एक मित्र पिता बनता है दूसरा मित्र बेटा बनता है नाटक में। तो नाटक के अंदर उनके संबंध कैसे होते हैं? मित्र के रूप में नहीं, बाप और बेटे के बीच में जो संबंध होता है वैसे उस अनुसार उनका कार्य नाटक में होता है। लेकिन जब नाटक खत्म हो जाता है फिर बाप बेटे अपने आप को नहीं मानते हैं, वो अपने मित्र ही मानते हैं। बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आएंगे और ऐसे संबंध नाटक से बाहर आके वही संबंध बनाए रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है, कोई नाटक में शामिल होता है, राजा की भूमिका निभाता है और वो भूमिका में इतना मग्न हो जाता है कि घर में आकर भी राजा की तरह ही बैठता है, पानी लाओ, है ना। तो नाटक तो हमारा वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है दुनिया में। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार का दिव्य नाटक करते हैं, ये हमेशा चलता है, ये चमत्कार है। यहां जब हम लोग नाटक करते हैं थोड़े समय के लिए करते हैं फिर खत्म, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नाटक सदैव चलते हैं। अब भगवत गीता के अनुसार हम जानते हैं कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका अस्तित्व सदैव बना रहता है वो सत्य है, और जिसका अस्तित्व सदैव नहीं बना रहता है, जो क्षणभंगुर है, तो वो सत्य नहीं है। तो ये भौतिक शक्ति जो है जिससे कि ये सृष्टि बनी हुई है वो सदैव विद्यमान रहती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति ये सदैव रहती है, सत्य है। परंतु माया शक्ति के जो कार्य होते हैं जिनसे कि तरह तरह के नाम और रूप उत्पन्न होते हैं इस दुनिया में, वो क्षणभंगुर है। इसलिए उनका अस्तित्व होते हुए भी क्योंकि ये स्थायी रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं असत्य है। हम असत्य इस दृष्टि से नहीं कहते हैं कि भौतिक संसार है ही नहीं, है परंतु क्षणभंगुर है। जैसे एक सपना होता है, हम कहते हैं कि सपना झूठ है, क्यों? क्योंकि वो थोड़े क्षण के लिए रहता है, परंतु हमारा जो स्थायी जीवन बाहर का जीवन है वो तो कई वर्षों तक चलता है, इसलिए हम इसको सत्य मानते हैं, सपने को झूठ मानते हैं। परंतु सोचिए कि यदि हमारा सपना ही चलता रहे, फिर क्या सत्य क्या झूठ? नाटक ही चलता रहे 24 घंटे, तो फिर सत्य क्या झूठ क्या? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य नाटक है जिसको हम लीला कहते हैं, जिसमें कि वो तरह तरह के संबंध बनाए रखते हैं और रस का आस्वादन करते हैं, ये हमेशा रहते हैं, इसलिए ये भी सत्य है, रस के दृष्टि से सत्य है। तो दो प्रकार के सत्य हैं, एक है तत्व के दृष्टि से जो सत्य है और दूसरा है रस के दृष्टि से सत्य है। आप समझ पा रहे हैं? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बड़े सरल ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं। ये नाटक की उपमा आप याद रखिए। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का ज्ञान हमें होना चाहिए कि तत्व के दृष्टि से श्री कृष्ण परम सत्य हैं, उनसे सब उत्पन्न होते हैं, और रस के दृष्टि से फिर कोई उनके माता हैं, पिता हैं, ठीक उसी प्रकार से रस के दृष्टि से उनके एक बड़े भाई भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि बलराम जयंती में हम कौन से विषय पे बोले जा रहे हैं। अब विषय यहां पहुंचता है तो इस समय हम समझ सकते हैं कि बलराम जी रस के दृष्टि से उनके बड़े भाई हैं, परंतु तत्व के दृष्टि से वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, वो भी भगवान ही हैं। हम लोग ऐसे अपने आप को विस्तार नहीं कर सकते। काश हम लोग कर सकते, कितना अच्छा होता। हम घर में रहते और हमारे विस्तार को हम कारखाने में बेच देते, जाओ तुम सब काम करो, दफ्तर में काम करो, अपने व्यवसाय करो, हम घर में बैठ के मजा करेंगे। ऐसे नहीं होता, परंतु भगवान ऐसा कर लेते हैं। तो भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, यथा राम, नरसिंह, मत्स्य, वामन, वरह इत्यादि, ये सब भगवान के विस्तार हैं, भगवान से अभिन्न हैं, वो भी सब भगवान ही हैं, परंतु मूल उद्गम इन अवतारों का कौन है? श्री कृष्ण। तो इन विस्तारों में जो सर्वप्रथम भगवान का विस्तार है वो है बलराम जी। तो बलराम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है तत्व के दृष्टि से, क्योंकि वो उनके प्रथम विस्तार हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, अंतर तो केवल शरीर के कांति का है। श्री कृष्ण के शरीर के का रंग जो है वो सांवला है, वर्षा के समय के घने बादल का रंग है, और बलराम जी बहुत गोरे हैं। श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, स्वर्ण रंग की धोती पहनते हैं, और बलराम जी नीलांबर पहनते हैं, नीले रंग के वस्त्र पहन लेते हैं। तो ऐसे बाह्य थोड़े बहुत अंतर हैं, परंतु वैसे कोई अंतर नहीं है। फिर भी जैसे कि आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बलराम के रूप में विस्तार करते हैं अपनी ही सेवा करने के लिए। फिर बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा गोलोक वृंदावन में करते हैं, समस्त वैकुंठ जगत में करते हैं, और अवतारों के उद्गम भी बलराम जी हैं। तो जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो अवश्य बलराम जी भी प्रकट होते हैं उनके साथ में, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक अवतार में, जैसे कि जब रामलीला हुई भगवान की, भगवान श्री कृष्ण राम अवतार के रूप में प्रकट हुए, तो उस समय वही बलराम उनके छोटे भाई बनकर आए, लक्ष्मण। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो रस के दृष्टि से एक व्याख्या है कि बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई क्यों बनते हैं, जबकि वो उनके प्रथम विस्तार हैं। छोटे भाई होना ठीक रहता, लेकिन बड़े भाई बने हैं। इसका कारण इस प्रकार से है, रामलीला में लक्ष्मण छोटे भाई थे, उनको श्री राम की बहुत सेवा करनी पड़ी और ऐसे कई कार्य करने पड़े जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जिनसे कि मतलब लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ, श्री रामचंद्र को भी दुख हुआ, सीता देवी को भी दुख हुआ। जैसे रावण का वध करने के बाद श्री राम ने कहा, मैं सीता को स्वीकार नहीं कर सकता, अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था लक्ष्मण को करना पड़ा, करनी पड़ी थी। और वहां लक्ष्मण जी बहुत बेचैन हो गए, बहुत विचलित हो गए और कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि वो छोटे भाई थे। तो उनको सब देखना पड़ा, ये सब करना पड़ा, बहुत दुख हुआ उनको कि सीता देवी को कितना कष्ट हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि श्री रामचंद्र को अच्छा लग रहा था, उनको भी तो कितना दुख हो रहा था। परंतु श्री रामचंद्र ने अपने आप को कर्तव्यबद्ध समझ के ऐसा आदेश लक्ष्मण को दिया। फिर ऐसे अनेक घटनाएं हुई रामलीला में। तो लक्ष्मण ने ठान लिया कि अगली बार जब हम प्रकट हो जाएंगे तो मैं बड़ा भाई बनूंगा। मैं अब छोटा भाई बन जाता हूं तो मुझे बहुत मानना पड़ता है, हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, लेकिन बड़े भाई जब हो जाऊंगा तब मेरी बात चलेगी। तो ये भी एक रस है, ये भी एक लीला है, तो ये भी सत्य है क्योंकि भगवान से संबंधित है और ये भी सदैव ऐसे चलता है। तो फिर बलराम जी बड़े भाई बन के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की लीला भी आप सब जानते ही हैं, बचपन से अवश्य आप ये लीला सुनते आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पहले माता देवकी के गर्भ में 6 बच्चे हुए थे। इन 6 बच्चों का वध क्रूर कंस ने, जो कि कृष्ण के मामा थे, उन्होंने कर दिया और वो वापस अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर गए। ये 6 बच्चे जो देवकी माता के गर्भ में थे, ये वास्तव में कौन थे? ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, बल्कि हैं, जिनका नाम है मरीचि। उनके 6 पुत्र थे। तो उन 6 पुत्रों ने एक अपराध किया ब्रह्मा जी के प्रति, जिसके फलस्वरूप उनको श्राप मिला कि उनको भौतिक जगत में जाके असुर योनि से जन्म लेना होगा, और इसलिए वो काल नेमी नाम के एक असुर के पुत्र बने। और ये जो 6 पुत्र हैं वो तपस्या करने गए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए इनके दीर्घ काल की तपस्या के बाद, तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या वरदान चाहिए आपको? तो इन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सुरक्षा चाहते हैं, देवताओं के हाथों से हमारा मारे जाना नहीं चाहते हैं, न राक्षसों के हाथों से, ऐसे बहुत कुछ कहते गए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। जब उनके दादा हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकशिपु ने शाप दिया उनको कि मेरे आश्रय को त्याग करके तुम ब्रह्मा जी के शरण ग्रहण करने के लिए चले गए, मेरे होते हुए तुम ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो मेरे प्रति तुमने अपराध किया है, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अगले जन्म में तुम तुम्हारे इस जन्म के पिता के द्वारा मारे जाओगे। अब जो तुम्हारा पिता है कालनेमी, वो अगले जन्म में तुम्हारा मामा बनेगा, और जब तुम्हारा जन्म होगा, यही इस जन्म का जो पिता है और आने वाले जन्म में जो तुम्हारा मामा होगा, तुम सबकी हत्या करेगा। तो ऐसे शाप उनको मिला और माता देवकी के गर्भ में एक के बाद एक जब उनका जन्म होने लगा, तो भगवान की योजना ये थी कि उनको जल्द से जल्द जल्द जो है वापस भेज दे जाए उनके धाम में, ऊपरी लोकों में। इसलिए वो चाहते थे कि जो श्राप है वो तो पूर्ण हो गया, इनका जन्म तो हो गया, लेकिन यह और ठहरने की आवश्यकता नहीं है। तो जब कंस का हृदय बदल रहा था, पिघल रहा था वसुदेव के सत्यवादी स्वरूप को देख के, तो नारद जी चिंतित होगा कि सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये दयालु बन जाएगा कंस तो फिर क्या होगा? तो वसुदेव जब अपने पहले पुत्र को लेकर कंस के पास आए थे तो तो कंस का हृदय इतना पिघल गया, वो कहने लगे कि हे कंस, तो वापस ले जाओ, हे वसुदेव, इस बच्चे को वापस ले जाओ, मुझे डर है केवल तुम्हारे आठवें पुत्र से, पहले पुत्र से नहीं। तो वसुदेव प्रसन्न होकर बच्चे को ले गए, परंतु मन में संशय तो था ही गहरा कि ये कंस जो है ये असुरी वृत्ति का आदमी है और ऐसे असुरों के प्रति विश्वास नहीं किया जा सकता है। आज कुछ कहते हैं कल कुछ और कहेंगे, बिल्कुल उल्टा करेंगे। इसलिए आज बड़ा दयालु बन गया है लेकिन कल ही बड़ा क्रूर बन सकता है, और ऐसे ही हुआ। परंतु क्यों हुआ? नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अरे कंस, मैं तो देवलोक से गुजर के आ रहा हूं और वहां देवों की एक सभा बनी चल रही थी और मैंने सुना कि वहां पे देवगण योजना बना रहे हैं तुम्हारी हत्या के लिए। अच्छा, मेरी हत्या के लिए योजना बना रहे हैं? हाँ, और तुम हो जो इतने दयालु बन गए, ये वसुदेव के बच्चों को यूं ही छोड़ रहे हो जबकि आकाशवाणी हुई थी। लेकिन आकाशवाणी तो आठवें पुत्र के बारे में थी। अरे कंस, कौन जानता है आठवां पुत्र कौन सा है? आठ हैं, इधर से एक गिनोगे तो ये पहला है, इधर से गिनोगे तो ये है पहला। तो कौन सा पहला पुत्र है, कौन सा अंतिम पुत्र है, कौन जाने। तो कंस को भड़काने का काम तो बढ़िया हो गया और कंस निकल पड़े। लेकिन नारद मुनि के बारे में हमें कभी गलत नहीं समझना चाहिए। ऐसे देखते हैं कि बाहर की दुनिया में लोग नारद मुनि के बारे में कुछ अच्छी दृष्टि नहीं रखते हैं, बल्कि नारद मुनि के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो सब जगह जाके कुछ लोगों को भड़काते हैं, लोगों में झगड़ा पैदा करते हैं। परंतु हमें जानना चाहिए कि नारद जी कौन है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनके श्रेष्ठ प्रचारक हैं। जहां भी वो जाते हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। और जब वो देखते हैं कि लीला कुछ बदलती जा रही है तो वो जाके ठीक करते हैं। जैसे नाट्य लीला में पात्र जब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं, पीछे से एक व्यक्ति रहता है, वो देखता है कहीं गलती हुआ है, ऐसा नहीं ऐसा करो, हाँ, तो फिर उसको याद आता है मुझे ऐसा करना चाहिए। तो नारद जी जब देखते हैं कि लीला में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो आके ठीक कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जो भी कुछ करते हैं उनके पीछे एक उद्देश्य होता है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने आते हैं, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने आते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने आते हैं। तो ये भगवान के उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए। नारद मुनि की जिम्मेदारी है कि वो देखते हैं और साथ साथ में वो ये भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को योजना बनाई है कि उनकी लीला किस तरह से चलनी चाहिए। तो नारद मुनि भगवान की लीला के अनुसार ऐसे कार्य करते हैं। तो नारद मुनि के बारे में ऐसे कब गलत सोचना, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो खैर, कंस ने आके उस बच्चे की हत्या कर दी और वसुदेव देवकी को गिरफ्तार कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। और जैसे ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई तो वो अपने लोक में चला गया। उसी तरह से हर साल एक एक पुत्र होता रहा और कंस उनकी हत्या करते गए। और फिर ये छह के छह बच्चे जो मरीचि के पुत्र थे मूल रूप से, वो वापस अपने लोक में चले गए। इनको षड गर्भासुर कहते हैं, ये छह बच्चे जो देवकी के गर्भ में थे। तुम्हारे एक वैष्णव आचार्य हैं जिनका नाम है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वो बताते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है। वो कहते हैं कि जब कोई साधक इस दुनिया में रह के भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है तो उसे अभक्तों के संग से बहुत डरना चाहिए। यदि वो नहीं डरेगा तो फिर वो उनका संग करेगा, और जब उनका संग करेगा तो उसकी भक्ति बिगड़ जाएगी। जैसा संग वैसा रंग, तो अभक्तों का रंग भी चढ़ जाएगा उस भक्त के ऊपर, उसकी भक्ति शिथिल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो भक्त को चाहिए कि वो अभक्तों के संग से डरे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो डर है, ये है कंस। इस डर के प्रतीक है कंस, साथ साथ में माता देवकी भक्ति के समान है। और ये छह जो पुत्र थे देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले, वो हैं षड रिपु, हमारे छह शत्रु। कौन? चीन, पाकिस्तान, कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये छह शत्रु जो हमारे हृदय में बैठे हैं, निकल कर निकलने का नाम नहीं लेते हैं, किराया भी नहीं देते हैं, केवल कष्ट देते हैं, बहुत हैरान करते हैं, तरह तरह के कार्य हमें करने पड़ते हैं उनके कारण। तो जब हम अभक्तों के संग से डरने लगते हैं और भक्ति करते हैं, तो ये षड रिपु जो हैं, ये छह अनर्थ हमारे हृदय में, वो नष्ट होने लगते हैं। और फिर भक्ति करते करते फिर भक्ति के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब तक हमारा हृदय अशुद्ध है, अनर्थों के द्वारा ग्रस्त है, तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। भगवान केवल एक शुद्ध हृदय में प्रकट होते हैं। तो ऐसी सुंदर व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और फिर वो बताते हैं कि जब ये छह गर्भ, इनका जन्म हो गया, उनकी मृत्यु भी हो गई, परंतु ये तो पहले असुर थे, तो छह असुरों के जन्म लेने के बाद कृष्ण वहां कैसे प्रकट होंगे? इसलिए बलराम जी इन छह बच्चों के बाद देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण के प्राकट्य की तैयारी करने के लिए। जो भी अशुभ चीजें हैं इन छह षड गर्भों के द्वारा, वो सब बलराम जी प्रकट होकर सब शुद्ध कर देते हैं। फिर थोड़े महीनों के लिए रहते हैं, छह महीनों के लिए वो देवकी माता के गर्भ में रहते हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण योग माया को आदेश देते हैं कि तुम ले जाओ, मेरे विस्तार जो हैं संकर्षण शेष बलराम, वो अब माता देवकी के गर्भ में हैं, उनका स्थानांतर करना और माता यशोदा रोहिणी देवी के गर्भ में स्थानांतरित कर देना। माता रोहिणी जो हैं वो वसुदेव नंद महाराज के संरक्षण में गोकुल में निवास कर रही हैं। तो योग माया ने वैसे ही किया, और सभी ने सोचा कि देवकी के सातवें गर्भ का पतन हो गया है, गर्भपात हो गया है। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में ये बच्चा अब रोहिणी देवी के गर्भ में था। तो ऐसे सात गर्भ हुए देवकी के, और अब श्री कृष्ण को देवकी के गर्भ में प्रकट होने के लिए परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल और उपयुक्त रही। फिर श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। उसके बाद क्या हुआ, यदि आपको जानना है तो जन्माष्टमी के समय आना है, परंतु अब विषय बलराम जी का है। तो वहां पर गोकुल में बलराम जी का जन्म तो हो गया रोहिणी देवी के गर्भ से, साथ साथ में श्री कृष्ण का भी जन्म थोड़ी देर के बाद हुआ माता यशोदा के गर्भ से। और फिर दोनों का नामकरण संस्कार करना था, लेकिन जब गर्ग मुनि आए तो ऐसे सोच विचार किया गया कि ऐसे बड़े धूमधाम से नामकरण संस्कार आदि करने से कंस को संशय हो जाएगा, हो सकता है वो हानि पहुंचाए इन दो बच्चों को। देवकी के 6 पुत्रों की हानि तो कर ही दी है, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप में नामकरण संस्कार कराया। तो कृष्ण का नाम भी तो गर्ग मुनि ने रखा और साथ साथ में बलराम जी का भी नामकरण हुआ। तो इस श्लोक में हम देखते हैं गर्ग मुनि या गर्गाचार्य नामकरण के समय बलराम जी को क्या नाम देते हैं। श्री गर्ग उवाच, अयम हि रोहिणो रोहिणी पुत्र, रमयन सुहृदो गुणैः। आख्यास्यते राम इति, बलाधिक्याद् बलं विदुः। यदूनाम् अपितक भावा संकर्षणमुत उन्त्यपि। संकर्षणम् उषन्त्यपि। एक प्रभु जी एक माता जी बोलेंगे।
श्री गर्ग
उवाच, अयम हि रोहिणी पुत्र, रमयन सुहृदो गुणैः। आख्यास्यते राम इति, बलाधिक्याद् बलं विदुः। यद्नाम अपृथक् भावात् संकर्षणम् उषन्त्यपि। माता जी कोई बोलेंगे। श्री गर्ग उवाच, अयम हि रोहिणी पुत्र, रमयन सुहृदो गुणैः। आख्यास्यते राम इति, बलाधिक्याद् बलं विदुः। यद्नाम पृथग्भावात् संकर्षणम् उषन्त्यपि। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। चूंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। तो ऐसे गर्ग मुनि ने 3 नाम दिए। कौन से 3 नाम दिए? पहला है राम, दूसरा बलराम, तीसरा संकर्षण। तो राम रम धातु से आता है, मतलब रमण करना, आनंद लेना। तो क्योंकि ये बच्चा आगे चल के गोकुल के समस्त निवासियों को आनंद प्रदान करेगा, इसका नाम राम होगा। वैसे वैदिक शास्त्रों में राम शब्द अयोध्यावासी राम को भी संबोधित करता है, भृगुपति परशुराम को भी संबोधित करता है, और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को भी संबोधित करता है। बल्कि राम शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के संबोधन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि सबसे मूल रूप से सबको आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो खैर, यहां इसलिए उनका नाम हुआ बलराम, और क्योंकि वह बहुत बलवान होने वाले हैं उनका नाम हुआ बल या बलराम, और क्योंकि उन्होंने दोनों परिवारों को, वसुदेव और नंद महाराज के परिवारों को जोड़ दिया, इसलिए उनका नाम होगा संकर्षण। किस तरह से जोड़ दिया? वैसे वसुदेव और नंद महाराज संबंधी थे, परंतु वसुदेव की माता क्षत्रिय थी और नंद महाराज की माता वैश्य थी, इसलिए नंद महाराज ने वैश्य कार्य शुरू किया, अपना लिया, और वसुदेव ने क्षत्रिय पेशा स्वीकार कर लिया। तो जब बलराम जी जो कि पहले देवकी के गर्भ में थे और अब रोहिणी माता के गर्भ में आए, जो कि नंद महाराज के संरक्षण में गोकुल में थी, तो ऐसे बलराम जी ने दोनों परिवारों को जोड़ दिया, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। तो वहां वृंदावन में श्री कृष्ण और बलराम दोनों की लीलाएं बहुत सुंदर ढंग से चलती रहीं। माखन चोरी करना, तरह तरह के दिव्य शरारतें करना, फिर बछड़ों को चराने ले जाना, फिर आगे चल के गायों को चराने ले जाना, समय समय पर असुरों का वध करते रहना। तो ऐसे श्री कृष्ण बलराम दोनों बहुत सुंदर दिव्य लीलाएं वृंदावन में करते रहे। आगे चल के वृंदावन से वो मथुरा भी गए, मथुरा से फिर वो द्वारका भी चले गए। तो इस तरह से बलराम जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता की। आज बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, तो हमें बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए तीव्र भावना से, कि वो हमारे ऊपर कृपा करें, कि वो हमारे हृदय को भी शुद्ध बनाएं, हमारे षड रिपों का वध कर दें, ताकि श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो सकें। वैसे बलराम जी ये आदि गुरु हैं, तो इस दुनिया में जो गुरु हैं वो सब प्रामाणिक जो गुरु होते हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इसलिए बलराम जी का आविर्भाव दिवस हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वही हमें राधा कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। और जहां तक कार्यों की बात है, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, गो रक्षण के प्रतीक हैं श्री कृष्ण। बलराम जी के हाथ में एक हल है और वो कृषि के प्रतीक हैं, तो कृष्ण बलराम दोनों मिलके गो रक्षा और कृषि के प्रतीक हैं, क्योंकि वो दोनों वैश्य परिवार से थे वृंदावन में। कम से कम ये भी उनकी लीला है। वैसे श्री कृष्ण और बलराम दोनों भगवान होने के नाते उनका इस वर्णाश्रम पद्धति से कोई संबंध नहीं है, वो ना तो वैश्य है ना क्षत्रिय है ना कुछ, वो तो परम सत्य भगवान है, परंतु अपनी लीला रचाते हैं इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी ने जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की शाखा स्थापित की और मंदिर की स्थापना हुई, तो वहां पे उन्होंने श्री कृष्ण बलराम ये मुख्य मूर्तियां बनाई वहां की, और सारे मंदिर का नाम भी है श्री कृष्ण बलराम मंदिर। यद्यपि राधा श्याम सुंदर हैं, विद्यमान विराजमान हैं और गौर निताय भी विराजमान हैं, फिर भी प्रभुपाद ने ठीक समझा कि रमण रेती में श्री कृष्ण और बलराम सख्य रस का आस्वादन करते थे ग्वालों के साथ में, गायों के साथ में। तो ये रेती बहुत पावन है, यहाँ इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण बलराम मंदिर होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि आध्यात्मिक शक्ति के लिए हमें, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए और आध्यात्मिक शक्ति के लिए हमें बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज बलराम जी के आविर्भाव दिवस के समय हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि बाहर की माया शक्ति बहुत प्रबल है और हमारे मन को डामाडोल करते रहती है, हमारे हृदय में अनर्थ बढ़ते रहते हैं, तो कृपया आप हमें ये आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कीजिए जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा सदैव कर सकें, हम शुद्ध भक्त बन जाएं। ऐसी प्रार्थना आज के दिन विशेष करके बलराम जी अवश्य सुनेंगे और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आपके कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं? आज तो बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, तो बलराम जी के बारे में कुछ प्रश्न हो तो अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मचारी हनुमान जी से भी सीख सकते हैं कि हमें भी ऐसे सुदृढ़ रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और इसके लिए जो शक्ति चाहिए हम बलराम जी से मांग सकते हैं। हनुमान जी भी बड़े कृपालु हैं, अवश्य वो भी शक्ति प्रदान करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। एक कण भी ईश्वर है।
एक जो कण जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने ऐसा तत्व किया कि एक जो कण है उसमें का ये ईश्वर तत्व है।
नहीं नहीं नहीं, ये अभी जो चल रहा है ना, वो जो अखबारों में आया है, नहीं नहीं, ईश्वर तो ऐसे ही नाम दिया है उन्होंने, उस कण को उन्होंने ऐसे भगवान ऐसे मजाक में नाम दिया है। वो लोग थोड़े विश्वास करते हैं भगवान में, ऐसे नाम उस कण को दिया है उन्होंने, वास्तव में ऐसा नहीं मानते हैं वो लोग। ठीक है, हरे कृष्ण। जब एक दूसरे को देते हैं तो बंद मत कीजिए, ठीक है, जैसे है वैसे ही रखिए। हरे कृष्ण।
जैसे कि काल में अगले जन्म में मामा बन के आ गए और उनके और उनको मार दिया, तो इस जगत में अभी जो भी हलचल हो रही है उसके पीछे भी कुछ ऐसे ही कारण है क्या?
हो भी सकते हैं कर्म के नियमों के अनुसार, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के प्रति कोई अन्याय या अत्याचार करें ये सोच के कि उसके कर्म में लिखा होगा इसलिए हम उसके कर्म को पूर्ण कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं, वो हमारा काम नहीं है, वो भगवान का काम है। तो हम यदि ऐसा कोई कार्य करते हैं तो हम दंडित होंगे भगवान के नियमों के द्वारा। ठीक है, तो अभी आरती होगी थोड़ी समय में। हाँ, तो थोड़ी सूचनाएं हैं अभी। हरे कृष्णा। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर प्रेमानंदे।